पूर्व पाठ का जो अंत हुआ था उस समय में ये बात आई थी कि शब्द में गुणत्व तो रहता है, फिर कैसे उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है विशेषण असिद्ध है, तो उसके लिए समाधान ये दिया गया था कि शब्द में गुणत्व भले ही रहता हो लेकिन गुणत्व जो है ना विशेषण के रूप में शब्द में नहीं रहता है, क्योंकि विशेषण के रूप में होने के लिए उसको अन्वय व्यवच्छेदन प्रयोजनवत होना चाहिए, माने अन्वय व्यतिरेक के आधार पर उसका प्रयोजन होना चाहिए। वह अन्वय व्यवच्छेद के रूप में उसका प्रयोजन नहीं है, उसका उसमें विशेषणत्व तो नहीं है, और जब विशेषणत्व तो नहीं है गुणत्व तो में, तो वह शब्द में भी जो है उस असिद्ध ही माना जाएगा। तो ये जो कहा गया कि गुणत्व, तो गुणत्व गुणत्वेन तो है उसमें शब्द में, लेकिन गुणत्व विशेषणत्वेन शब्द में नहीं है। अब यहाँ जो कहा गया ना प्रयोजनवत, इसको पहले भी मैंने बताया हुआ है कि विशेषण हमेशा क्या होता है ना, वो व्यवच्छेदक होता है, व्यावर्तक होता है, माने किसी एक से दूसरे को अलग करने के लिए विशेषण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ जो अकारण कत्वात हेतु है वही नित्यत्व का साधक है, माने जो जिस जो किसी कारण से उत्पन्न न हो, जो किसी जिसका कोई कारण न हो उसको कहा जाएगा अकारणक, तो जो नित्य होता है वह अकारणक होता है। तो यहाँ अकारणक कहने से ही जो है शब्द का नित्यत्व सिद्ध होगा, उसमें गुणत्व रहते हुए अकारणकत्व है ये कहना जो है ना व्यर्थ है, क्योंकि गुणत्व रहते हुए ये विशेषण लगाने की कोई यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, ये किसी का व्यावर्तक है ही नहीं, ये किसी को अलग करता ही नहीं है, और जब किसी को अलग नहीं करेगा तो यह विशेषण नहीं माना जाएगा। आप याद करिए मैंने सिखाया था आपको कि न शीतेन न चोष्णे न बहनी क्वापी विशिष्यते, कि बहनी जो है उसको शीत बहनी या उष्ण बहनी, इस तरह से बहनी में शीत विशेषण और उष्ण विशेषण नहीं लगाया जाता, क्यों, क्योंकि वह अन्वय व्यवच्छेदन प्रयोजनवत नहीं होता, अर्थात शीत बहनी से किसी बहनी का जो है पृथककरण नहीं होता, और उष्ण बहनी कहने से किसी बहनी का पृथककरण नहीं होता, क्योंकि बहनी तो हमेशा जो है उष्ण ही होगी, तो उस जो हमेशा उष्ण ही है उसको उष्ण विशेषण लगा करके क्या फायदा, और शीत बहनी भी नहीं कहते हैं क्योंकि बहनी कभी शीत होती ही नहीं है, तो इसीलिए कहा गया संभव व्यभिचाराभ्याम स्याद विशेषण अर्थवत, कि जहाँ पर विशेषण जो है ना संभव भी हो और विशेषण असंभव भी हो वहाँ पर विशेषण को अर्थवत माना जाता है, माने विशेषण को सब प्रयोजन माना जाता है, अन्यथा विशेषण निष्प्रयोजन होता है। यहाँ जो गुणत्वे सती अकारण कत्वात कहा, इसमें भी गुणत्वे सती जो है वो निष्प्रयोजनक है, इस गुणत्वे विशेषण को लगाने से किसी की का पृथककरण नहीं होता, किसी को अलग नहीं किया जाता, तो इस तरह से गुणत्व तो रहता है शब्द में लेकिन गुणत्व जो है विशेषण के रूप में शब्द में नहीं रहता, इसलिए इसको असमर्थ विशेषणा सिद्ध नाम का जो है हेत्वाभास माना गया था। ये तो पहले के पाठ का मैंने थोड़ा सा स्पष्टीकरण दिया, अब आगे का पाठ देखते हैं। एक और भेद है इसका असमर्थ विशेष्या सिद्ध, उसका उदाहरण दिया यथा तत्रैव तद वैपरीत्येन प्रयोगा, तत्रैव माने ये जो था ना शब्दो नित्यो गुणत्वे सति अकारण कत्वात, इसी में जो है ना वैपरीत्येन प्रयोग कर दीजिए, माने उल्टा कर दीजिए, कैसे, तथा ही शब्दो नित्यः अकारण कत्वे सति गुणत्वात, अब अकारण कत्व को विशेषण बना लेते हैं और गुणत्व को विशेष बना लेते हैं, इस तरह से विपरीत प्रयोग अगर करेंगे तो यहाँ पर असमर्थ विशेष्या सिद्ध नाम का हेत्वाभास होगा। अत्र तु विशेषण मात्र सेव नित्यत्व साधने, अब यहाँ शब्द में जो नित्यत्व का साधन किया गया है शब्दो नित्यः अकारणकत्वे सति गुणत्वात्, इस वाक्य से, इस अनुमान वाक्य से, इसमें जो विशेषण मात्र है अकारणकत्व, उसी से जो है नित्यत्व का साधन हो जाएगा, वही नित्यत्व साधन में समर्थ है, और विशेष्यम असमर्थम, विशेष जो है गुणत्व यह असमर्थ है, क्योंकि आप स्वयं सोचो ना जिसमें गुणत्व रहेगा वो क्या नित्य होता है क्या, अब रूप रस सब में गुणत्व रहता है, क्या रूप रस नित्य है, तो गुणत्व जो है ना नित्यत्व का साधक नहीं है, यहाँ जो विशेष है गुणत्व ये असमर्थ है, मतलब व्यर्थ है। स्वरूपासिद्धत्वंतु, और इसको स्वरूपासिद्ध नाम का हेत्वाभास इसलिए कहते हैं क्योंकि विशेष्याभाव विशिष्टाभाव, विशेष्य के अभाव रहने पर विशिष्ट का अभाव माना जाता है। विशिष्टस्य च हेतुत्वेन उपादानात्, और यहाँ पर हेतु के रूप में जो उपादान है अर्थात ग्रहण है वह विशिष्ट के रूप में है, तो विशेष्य के अभाव रहने पर भी यहाँ पर विशिष्ट अभाव माना जाएगा। अब यहाँ एक चीज आप लोग क्लियर समझ लीजिए कि विशिष्टाभाव क्या है। तो विशिष्ट का जहाँ अभाव हो उसको कहते हैं विशिष्टाभाव। अब विशिष्ट कहलाने के लिए क्या क्या जरूरी है, दो जरूरी है, विशेष्य जरूरी है और विशेषण जरूरी है। विशेष विशेषण जहाँ रहे उसी का नाम है विशिष्ट। तो विशिष्ट का अभाव जो है वह दो स्थिति में होता है, या तो विशेषण का अभाव हो तो भी विशिष्टाभाव कहा जाएगा, या फिर विशेष्य का अभाव हो तो भी विशिष्टाभाव कहा जाएगा। और हाँ, अगर दोनों का अभाव हो, विशेष्य का भी अभाव हो और विशेषण का भी अभाव हो, तब तो विशिष्टाभाव नेचुरल कहा ही जाएगा। अब जैसे दंडवान पुरुष ये कहा गया, तो वहाँ न कोई पुरुष हो और वहाँ कोई दंड हो तो भी तो विशिष्टाभाव होगा। ऐसे ही दंडवान पुरुष में पुरुष हो दंड न हो माने विशेषण न हो तो भी जो है विशिष्टाभाव माना जाएगा, और दंड हो दंडवान हो और पुरुष न हो तो भी जो वहाँ पर विशिष्टाभाव माना जाएगा। इस तरह से विशिष्टाभाव जो है विशेष्य के न रहने पर भी माना जाता है, विशेषण के न रहने पर भी माना जाता है और दोनों के न रहने पर भी माना जाता है। ये जो न रहना है इसको भी समझिए, न रहना क्या है, एक तो वो चीज़ हो ही नहीं और दूसरा कि वह व्यर्थ हो। जैसे यहाँ पर जो दो उदाहरण दिए गए, गुणत्वे सति अकारणकत्वात् और अकारणकत्वे सति गुणत्वात्, इसमें जो विशेष रूप और विशेषण रूप में गुणत्व का प्रयोग किया गया है वह जो है ना वह व्यर्थ है, तो व्यर्थ स्थिति में भी जो है वहाँ पर विशिष्टाभाव माना जाता है। ये यहाँ का सारांश था। आगे अब जो अगला जो भेद है हेत्वाभास का, हेत्वाभास के भेद के समय में बताया गया था ना कि असिद्ध विरुद्ध अनेकांतिक प्रकरण सम कालातयापदिष्ट भेद से पांच प्रकार के हेत्वाभास होते हैं, उसमें से असिद्ध नाम का जो हेत्वाभास है वह तीन प्रकार का होता है, आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध और व्याप्यत्वासिद्ध। तो आश्रयासिद्ध को बताया गया, स्वरूपासिद्ध को बताया गया, अब जो है वह व्याप्यत्वासिद्ध को यहाँ पर बताया जा रहा है। इसलिए कहते हैं आगे कि व्याप्तत्वासिद्धस्तु स एव यत्र हेतु हो व्याप्ति न अवगम्यते। व्याप्तत्वासिद्ध नाम का हेत्वाभास कौन है, तो कहा कि यत्र हेतु हो व्याप्ति न अवगम्यते, जहाँ पर हेतु की व्याप्ति अवगत न होती हो अर्थात हेतु की व्याप्ति न रहती हो वहाँ पर व्याप्तत्वासिद्ध जो है नाम का हेत्वाभास होता है। स द्विविधः, और वह जो व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वाभास है वो दो प्रकार का होता है, एक साध्येन असहचरित, एक जो है साध्य से अगर असहचरित हेतु हो तो वहाँ पर व्याप्यत्वासिद्ध होगा, अपरस्तु सोपाधिक साध्य संबंधी, सोपाधिक साध्य से संबंधी अगर हेतु है तो वहाँ पर भी व्याप्यत्वासिद्ध माना जाता है। आप कई बार सुन चुके हैं व्याप्ति का नाम क्या है, तो साहचर्य नियम जो है उसको व्याप्ति कहते हैं, माने साथ में होना, यही है व्याप्ति। तो इसमें यहाँ जो व्याप्यत्वासिद्ध, अच्छा जब साथ में होना है यह है व्याप्ति, तो जहाँ व्याप्ति संबंध होगा वहाँ पर एक व्याप्य होगा और एक व्यापक होगा, तो अधिक देश में रहने वाला व्यापक होता है, न्यून देश में रहने वाला व्याप्य होता है। अब जैसे बहनी और धूम है तो बहनी जो है वह व्यापक होता है और धूम जो है वह व्याप्य होता है, और इन दोनों के व्याप्य व्यापक के बीच में कौन सा संबंध होता है, व्याप्ति होती है, व्याप्ति होती है माने इन दोनों में साहचर्य होता है, माने सहचर ये दोनों होते हैं, साथ साथ जो है ना रहते हैं, तो साथ साथ रहने वाले को सहचर कहा जाता है और सहचर में रहने वाला जो संबंध है उसको साहचर्य कहते हैं, और वही साहचर्य जो है व्याप्ति शब्द से बताया जाता है। यहाँ जो व्याप्यत्वा सिद्ध की बात की गई है उसको में दो भेद बताए गए, यहाँ एक साध्येन असहचरित, माने एक तो वह है व्याप्यत्वा सिद्ध जो साध्य के साथ असहचरित हेतु, जबकि आप जानते हैं साध्य के साथ सहचरित होना चाहिए ना हेतु को, तभी व्याप्ति वहाँ पर रहेगी। लेकिन साध्य के साथ अगर हेतु असहचरित है तो वहाँ पर व्याप्यत्व सिद्ध होगा। दूसरा, साध्य का संबंधी तो हो, माने साध्य से के साथ सहचरित तो हो, लेकिन वह साध्य जो है वह निरुपाधिक न हो करके सोपाधिक अगर साध्य है तो ऐसी जगह पर भी व्यापकत्व सिद्ध माना जाएगा। तत्र प्रथमो यथा, प्रथम जो भेद है साध्यन असहचरिता हेतु वाला, उसका उदाहरण दिया, यत सत तत् क्षणिकम यथा जलधरः, जो सत है तत् क्षणिकम वह क्षणिक है। सत मतलब, सत माने सत्ता, जिसमें सत्ता रहती है माने जिसका अस्तित्व रहता है, वह तत् क्षणिकम वह क्षणिक होता है। यथा जलधर, जैसे जलधर माने बादल, तो बादल सत है, बादल का अस्तित्व होता ही है, इसलिए बादल जो है वह क्षणिक है। तो जैसे जलधर जो है सत होने के कारण क्षणिक होता है, उसी तरह से कहा कि जो जो भी सत होता है पदार्थ सब क्षणिक होता है। संश्च विवादास्पदी भूतः शब्दादि, और सत कौन होता है, तो कहा कि विवादास्पदी भूत जो शब्द आदि है वह जो है यहाँ पर विवादास्पदी भूत है। यहाँ पर जो है ना एक बात जो इन्होंने, ये विवादास्पदी भूतः शब्द आदि जो कहा इसको समझिए, एक दो दिन पहले पाठ में आया था ना कि अनुमान का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ पर संदिग्ध अर्थ हो, संदिग्ध अर्थ हो तभी अनुमान का प्रयोग होता है, निर्णीत अर्थ में अथवा अनुपलब्ध अर्थ में अनुमान का प्रयोग नहीं होता है। वह जो संदिग्ध अर्थ है उसी को दूसरे शब्द से यहाँ पर कहा विवादास्पदी भूतः, जहाँ विवाद हो, जिसमें विवाद हो वही जो है पक्ष के रूप में मान्य होता है। यहाँ जो यत सत कहा गया, इसमें सत जो है ये पक्ष है, साध्य है, और वह जो साध्य है ये विवादास्पदी भूत है, माने संदिग्ध साध्य है, और उसमें किसको हम लेंगे, यत सत से किसको पकड़ेंगे, तो शब्द आदि को पकड़ेंगे, यही यहाँ पर कहा गया। अत्र ही शब्दादि पक्ष, इस अनुमान में शब्द आदि जो है वह पक्ष है। तस्य क्षणिकत्वम साध्यम, और क्षणिकत्व जो है शब्द आदि का वह यहाँ पर साध्य है, और हेतु क्या है, तो सत्वम माने सत्व होना, माने सत्व रहता है, अस्तित्व रहता है, इसलिए वह क्षणिक है, ये कहा गया ना। तो सत्वम हेतु, सत्व हेतु है। न च अस्य हेतु हो क्षणिकत्वेन सह व्याप्तो प्रमाणम अस्ति, अब यह जो सत्व नाम का हेतु है वह क्षणिकत्व नाम के साध्य के साथ इन दोनों की व्याप्ति में कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है प्रत्यक्ष आदि प्रमाण जिससे में कि ये सिद्ध हो कि जहाँ सत्व हेतु रहता है वहाँ पर क्षणिकत्व साध्य रहता है, इस सत्व में और क्षणिकत्व में कोई व्याप्ति जो है नहीं होती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो हेत्वाभास है वह साध्यन असहचरित हेत्वाभास है, व्याप्यत्वा सिद्ध है। अब दूसरा जो व्याप्यत्वा सिद्ध का भेद है कि सोपाधिक साध्य संबंधी वाला भेद, उसके बारे में बताते हैं। इदानीम उपाधि सहितो व्याप्यत्वा सिद्ध प्रदर्शिते, क्या तद यथा सौ श्यामो मैत्री तनयत्वाद परिदृश्यमान मैत्री तनय स्तोमवत, माने वह श्याम है माने काले वर्ण का है, क्योंकि मैत्री तनयत्वात् उसमें मैत्री नाम की जो महिला है उसका तनयत्व है माने पुत्रत्व है। परिदृश्यमान मैत्री तनय स्तोमवत, माने मैत्री के जितने भी तनय परिदृश्यमान हैं दिखाई देते हैं सब, उनका जो समूह है, स्तोम मतलब समूह, उनके समूह की तरह माने मैत्री के अन्य तनय की तरह जो है यह भी जो तनय है मैत्री का यह श्याम वर्ण का है, ऐसा यहाँ पर कहा गया। अत्र ही मैत्री तनयत्वेन श्यामत्वम साध्यते, यहाँ जो श्यामत्व का साधन किया जा रहा है इस अनुमान से वो किस रूप में किया जा रहा है, मैत्री तनयत्वेन रूपेन किया जा रहा है, अर्थात ये चूंकि मैत्री नाम की महिला का तनय है इसलिए इसमें श्यामत्व है। न च मैत्री तनयत्वम श्यामत्वे प्रयोजकम, आप जानते हैं कि मैत्री का बेटा होना श्यामत्व का प्रयोजक नहीं है, कारण नहीं है, क्या है कारण, किंतु शाक आदि अन्य परिणाम एवत्र प्रयोजक, माने शाक आदि जो खाना खाया जाता है, साग जो खाते हैं साग आदि, ये चाहे मरुआ की रोटी हो गई, तो ये सब खाने के कारण जो है किसी में श्यामत्व आता है, वही यहाँ पर जो है प्रयोजक होता है, मैत्री तनयत्व प्रयोजक नहीं है। और जो प्रयोजकश्च उपाधि उच्यते, और जो प्रयोजक है उसी का नाम है उपाधि। अतो मैत्री तनयत्वेन श्यामत्वेन संबंधे शाकादि अन्न परिणाम एव उपाधि। इसलिए यहाँ पर मैत्री तनयत्वेन श्यामत्वेन जो संबंध होगा उसमें शाकादि अन्न परिणाम जो रूप जो है उपाधि होगी। जैसे यथावा अग्नेह धूम संबंधे आर्द्रेंधन संयोग, जैसे अग्नि का जो धूम के साथ संबंध होता है उसमें उपाधि होती है कौन, आर्द्र ईंधन संयोग, माने गीला जो ईंधन है लकड़ी है उसके साथ संयोग होना वहाँ पर उपाधि माना जाता है। अतएव उपाधि संबंधात व्याप्तिर नास्ति, इसीलिए जो है यहाँ पर आर्द्र ईंधन संयोग रूप उपाधि होने के कारण अग्नि के साथ धूम की व्याप्ति नहीं मानी जाती है। अतएव उपाधि संबंधात व्याप्तिर नास्ति इति व्याप्तत्व असिद्धः अयम मैत्री तनयत्वादिर हेतु। इसी तरह से यहाँ भी मैत्री तनयत्व जो हेतु के रूप में प्रयुक्त है, या भी यहाँ भी उपाधि है, उपाधि है क्या, साकारजन्य परिणाम, और इस उपाधि से युक्त होने के कारण यहाँ पर सोपाधिक साध्य संबंधी हेतु माना जाएगा और यह व्याप्तत्व सिद्ध का ही उदाहरण होगा। यहाँ जो कहा गया कि उपाधि संबंध के कारण व्याप्ति नहीं है अग्नि और धूम के बीच में, इसका तात्पर्य यह है कि अग्नि रूप हेतु से अगर हम धूम का अनुमान करते हैं, कहते हैं कि अयम धूमवान अग्निमत्वात्, इस तरह का अगर अनुमान करते हैं तो इसमें आर्द्रेंधन संयोग रूप उपाधि चूंकि रहता है धूम में, इसीलिए यहाँ पर धूम के साथ अग्नि का व्याप्ति ज्ञान नहीं होता है, ये यहाँ पर तात्पर्य है। इस तरह से व्याप्तत्व सिद्ध का जो है भेद यहाँ पर बताया गया, और भी व्याप्तत्व सिद्ध का भेद है बताया जाएगा, जो कि हम अगले पाठ में उसकी हम चर्चा करेंगे। आज का पाठ यहीं पर स्थगित करते हैं।